नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमा की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो, जनगणमन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद कैबिनेट ने सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा फर्जी है और वायरल वीडियो AI द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसाइया अरुमनैया गम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतारथुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा, त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।